آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. چلتے ہیں ہم آج کی اپنی سیریز کی طرف. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. جس کے دل میں سختی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کا دل نرم ہو جائے، تو وہ یہاں آ کر کچھ وقت گزارے، اس کا دل نرم ہو جائے گا. جو چاہتا ہو کہ عبرت حاصل کرے، وہ یہاں کی دنیا میں غور و فکر کرے، عبرت حاصل ہو جائے گی. جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ یہاں کے باسیوں کے حال کا مشاہدہ کرے، غفلت دور ہو جائے گی. یہاں لوگ اپنوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تو کبھی آ جاتے ہیں، مگر عبرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. لوگ اس کو مردوں کی قیامگاہ سمجھ کے تو آتے ہیں، مگر اس کو کبھی اپنا فیوچر ہوم سمجھ کے نہیں آتے. بہت سی گاڑیاں اس کے باہر سے پکی سڑک پر گزرتی ہیں، اور لوگ اچکتی نظروں سے اس ویران بستی کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ان کی ہنسی مذاق گپ شپ اسی طرح جاری رہتی ہے، اور وہ ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ شاید میری بھی آج کی رات یہاں پر ہو، شاید میرا کل کا دن اس جگہ پر ہو. گزرنے والے گزرتے چلے جاتے ہیں بے پرواہی کے ساتھ، ہنستے کھیلتے، اور کوئی کبھی ان مسکینوں کی بے بسی پہ رحم کھا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتا. زندوں کے لیے قبرستان بس کسی اور ہی مخلوق کی جگہ ہے، جس سے ان کو خوف آتا ہے، اور جس سے ان کو کیا سروکار. زندوں کے لیے روشنیوں کے شہر ہیں، اس اندھیری جگہ سے ان کو کیا لینا دینا. جو سب سے زیادہ دعاؤں کے محتاج ہیں، جو اب اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعائیں کر جائے، کوئی تو دعا دے جائے، کیونکہ یہ اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے. ان کو دعائیں دینے کی زحمت بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اکثر بقیع جایا کرتے تھے، اور وہاں کے مردوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مگر ہمارے لیے یہ بات بڑی اچنبھے کی ہے. الا یہ کہ ہمارا کوئی اپنا پیارا ہی دفن ہو، تو اس کی قبر پہ حاضری دینے کو اپنا ایک سماجی فریضہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں عبرت چاہیے نہیں ہوتی. کیوں ہم اپنی ہستی کھیلتی زندگی میں ڈپریس ہوں ان قبروں کو دیکھ کے؟ ہمیں کیا ان کے ساتھ جو بھی ہو. ہم نے کوئی سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کا اپنے اوپر ذمہ تھوڑی لے کر رکھا. بڑی دور وہ سامنے میرے دوست طاہر کی قبر ہے. بڑا اچھا انسان تھا، نماز کا بھی پابند ہوا کرتا تھا. کیسے جوانی میں اس کا بلاوا آ گیا. اس کا تو یقیناً بڑا اچھا ہی انجام ہوا ہوگا. میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، جنید، یہ میرے دوست طاہر کی آواز تھی. جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب مجھے دفن کر کے لوگ روانہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا کہ مجھے 100 کوڑے مارے جائیں. जब मेरे पास फरिश्ता ये कोड़े मारने आया तो मैं परेशान हो गया और मैंने उससे कहा कि मैं तो अल्लाह का ताबेदार और इबादत गुजार बंदा हूँ। मैंने अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसको 50 कोड़े मारो, मगर मैं तो इसकी भी ताकत नहीं रखता था। तो मैंने फरियाद की कि कोड़ों में कुछ कमी की जाए, तो हुक्म हुआ इसको सिर्फ एक कोड़ा मार दो। जुनेद उस फरिश्ते ने मुझे एक कोड़ा मारा और उससे मेरी कब्र सारी आग से भर गई। मेरी तकलीफ का तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। जब मुझे इस तकलीफ से कुछ अफाका हुआ तो मैंने उस फरिश्ते से पूछा, ये मुझे किस गुनाह की सजा में मारा गया? उसने जवाब दिया, एक दिन तुमने बगैर वुजू के नमाज पढ़ी थी और एक दिन ऐसा भी गुजरा था कि तुम एक मजलूम के पास से गुजर के चले गए जो फरियाद कर रहा था, मगर तुमने उसकी मदद नहीं की। मुझे एकदम याद आ गया, ये बात तो मैंने पहले सुनी हुई है। मुझे वो हदीस याद आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के बारे में ऐसा ही बताया था कि उसको 100 कोड़े लगने थे और फिर 50 कहे गए और फिर एक कोड़ा लगाया गया और उसके यही जुर्म थे। मैं उसकी ये बात सुन के सख्त घबरा गया। वो कहने लगा, जुनेद तुम नहीं समझ सकते इस दुनिया को। अगर अल्लाह ताला पकड़ना चाहे तो एक गलती पे भी पकड़ सकता है, और अगर छोड़ना चाहे तो सारी जिंदगी की सियाकारियों को भी छोड़ सकता है। इसलिए डरते रहो हर तरह के गुनाहों से, किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करना। मैंने उससे पूछा, फिर अब तुम कैसे हो? कहने लगा, शुक्र है अब मैं बेहतर हूं, लेकिन याद रखो इन सजाओं को सहने की इंसान को ताकत नहीं है, ये हमारी अक्ल से भी मावरा सजाएं हैं। मैं तो बस इसका शुक्र करता हूं कि मेरा मामला यहीं तय हो गया और कयामत तक के लिए नहीं उठा के रखा गया। मुझे तो यहाँ पहुंच के अंदाजा हुआ कि ये गैब की दुनिया और ही दुनिया है। तुम इसको नहीं समझ सकते यहाँ के मामलात कैसे हैं, जो इसको चखता है वो ही जानता है। फिर हसरत भरे अंदाज में कहने लगा, तुम कैसे लोग हो जो परेशानियां पाले बैठे रहते हो दुनिया की, कि कहीं मुझे फलां बीमारी ना लग जाए, आए कहीं मेरे बच्चे अपने करियर में पीछे ना रह जाएं, आए महंगाई ज्यादा ना हो जाए, आए बचत नहीं हो रही, नौकरी ना चली जाए, बच्चों की शादियां अच्छी जगह हो जाए। फिर एक तंजिया हंसी हंसा और बोला, तुम तो इस पर भी परेशान होते हो कि हाय गर्मी बहुत हो गई, बारिश क्यों नहीं हो रही, सर्दी क्यों इतनी पड़ने लगी। तुम लोग कितने नासमझ हो, तुम जिंदा लोग अपने आप को बड़े अकलमंद समझते हो, मगर तुम लोग तो बहुत बेवकूफ हो। हमसे पूछो, हम भी तुम्हारी तरह इसी तरह परेशान हो जाया करते थे, हमारी भी बस यही फिक्रें थी, बच्चे, घर, तालीम, रोजी, रोटी, मगर अब होश आया, अब समझ आया कि वो तो सब बेकार फिक्रें थी। वो मामले तो इस काबिल भी नहीं थे जिन पर सारी जिंदगी टेंशन्स ली जाती। असल तो ये चीज है जिसको अपना हम और गम बनाना था। वो 50-60 साल की जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही जानी थी और हम उसके लिए कितने परेशान होते हैं, मगर अब ये कैसे गुजरेगी? काश दुनिया की तमाम फिक्रों पे इस फिक्र को गालिब किया होता तो यहां सुख से रहते। असल में हम सारी जिंदगी यही समझते हैं कि जिंदगी सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, बरजख की जिंदगी, कब्र में हिसाब किताब, कब्र में जजा सजा। इस पे कहते तो हैं कि हम ईमान रखते हैं, मगर हमारी फिक्रें बताती हैं कि हमारा ईमान वो नहीं जैसा होना चाहिए। जुनेद, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग जो खुद को बड़े अच्छे मुसलमान समझा करते थे, हमने भी इस जगह की ऐसी फिक्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। मेरे साथ वाली कब्र में ही देख लो, एक शख्स है जो सख्त अजाब में मुब्तला था, सिर्फ इसलिए कि जब पेशाब करता था तो पेशाब के छींटे उस पर पड़ते थे और वो परवाह नहीं करता था। अब भला देखो, ये बात तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई थी, फिर भी उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, या शायद लाइल्मी जिहालत ये अजाब को दावत देती है। जिसको पता ही ना होगा फिर वो भला बचेगा किस चीज से। और मेरे दाएं तरफ वाला, जब वो दफनाया गया तो उसके पास मुनकर नकीर आए सवाल करने के लिए, उसने सब सवालों के जवाब सही सही दे दिए। इस पे वो कहने लगे, तुमको इनका इल्म कैसे हुआ? वो बोला, मैंने कुरान पढ़ा, उस पे ईमान लाया, उसकी तस्दीक की अपने अमल से, अपने कौल से। इस पर जब कब्र उसको भींचने लगी तो एक तरफ उसका कुरान खड़ा हो गया, दूसरी तरफ उसकी नमाज खड़ी हो गई, तीसरी तरफ उसका सदका खड़ा हो गया, पैरों की तरफ उसका मस्जिद की तरफ चल के जाना खड़ा हो गया। वाकई सच्चा मुसलमान तो वही था। कैसे उसने अपने अमल के जरिए
पैरों की तरफ
और
उसका
इल्म के
मस्जिद की
जरिए
तरफ चल के जा
इस कब्र को अपने लिए कुशादा कर लिया। जुनेद, ये दुनिया अलग ही दुनिया है, यहाँ के भेद तुम क्या जानो। तुमको लगता है ना कि ये खामोश बस्ती है, यहाँ कुछ नहीं होता, मगर तुम क्या जानो जेरे जमीन क्या कुछ होता है। वो बातें किए जा रहा था और मैं गुम सुम उसकी बातें सुने जा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, जिस वजह से तुमको ये कोड़ा लगा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस चीज की ये सजा है? वो कहने लगा, बस क्या बताऊं, एक बार जल्दी में था तो सोचा ऐसे ही नमाज पढ़ लेता हूं, बस अपनी लापरवाही। जिन कामों की निपटाने में जल्दी की वो तो अब मुझे भूल भी गए, मगर अल्लाह के यहाँ भूल नहीं है, वहां सब कुछ लिखा हुआ है। मैं तो ये सोचता हूं कि शुक्र है मेरी नमाजें मौजूद थीं, वरना मेरी कब्र के सामने वाली कब्र में एक शख्स था जिसके ऊपर ऐसा अजाब मुसल्लत था, एक अजदहा उस पे सवार हो जाता था जो फजर से जुहर तक उसको डसता रहता था। वो फजर की नमाज में कोताही करता था, सुस्ती करता था, और उसके काटने पे वो ऐसा चीखता था कि उसकी चीखों ने सबको परेशान कर रखा था। अब कुछ अरसे से उसको अफाका है, मगर तुम नहीं जानते, यहाँ के अजाब भी दुनिया के अजाबों से यकसर मुख्तलिफ हैं। इस सांप को तुम ये नहीं समझ सकते कि जैसे दुनिया के सांप हैं, ये अजदहा तो वो है कि शायद जमीन पे डंक मार दे तो सारी जमीन में जहर फैल जाए, जिसको देख के इंसान खौफजदा हो जाए। अगर जिंदगी में इंसान ऐसी चीज देख ले तो कोसों दूर भाग जाए चीखता हुआ, मगर कब्र में से कहाँ जाएगा जहां वो और उस पर मुसल्लत अजदहा। मगर कितने आराम से हमारे अपने मुसलमान लोग ये नमाजें छोड़ देते हैं। क्या उनको खबर नहीं कि उनके रसूल ने ये बताया हुआ? मैंने उससे सवाल किया, और ये बताओ कि कौन सा वो मजलूम था जिसकी तुमने मदद नहीं की, जिस पे तुम्हारे ऊपर ये सजा आई? ठंडी आह भर के कहने लगा, वो भी एक दिन था, मैं जा रहा था और मेरे सामने एक शख्स किसी के जुल्म सितम का शिकार था। मैं उसके लिए कुछ कर भी सकता था, मगर मैं अपने कामों में इस कदर मसरूफ था कि मुझे लगता था कि मुझे क्या पड़ी है, यहाँ तो हर कोई मजलूम ही है। मेरा जिम्मा थोड़ी है कि मैं हर मजलूम की मदद करता फिरूं। जुनेद सुनो, जब तुम किसी मजलूम को देखो तो जरूर आगे बढ़ के जो तुम्हारी इस्तेआत में हो उसकी मदद करना। तुम अगर जालिम का हाथ ना पकड़ सको तो कम अज कम मजलूम की दादरसी कर दो। जालिम को रोक ना सको जुल्म से तो मजलूम के जख्मों पे मरहम ही रख दो। जो तुमसे मदद की फरियाद करे तो उसकी आह सुन के बेपरवाही से गुजर ना जाना। मजलूम की आह अल्लाह के अर्श को हिला देती है। इंसान भूल जाता है, बेपरवाह हो जाता है, उसको याद भी नहीं रहता किसी मजलूम ने मुझे पुकारा था, मगर अल्लाह को याद रहता है। मेरे साथ जो हुआ, काश इस अंजाम तक कोई भी ना पहुंचे। कब्र आग से भर जाना आसान नहीं है, इसके लिए कोई मरहम नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। यहां जिसको दर्द मिल गया फिर उसके लिए कोई दादरसी करने वाला नहीं। इसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई और मुझे एकदम याद आया कि मुझे कुछ मजलूमों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो रेफ्यूजीज थे, उनके लिए किसी ने कहा था कि इनके लिए कुछ दे दो, और मैंने उस वक्त इग्नोर कर दिया था, वो भी तो मजलूम है। मैंने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और इस नीयत से उनको गिन के दूसरी जेब में रखा कि जाते ही मैं ये सदका करूंगा, और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, मगर हाँ, जितनी मेरी हिम्मत है तो उसके मुताबिक मुझसे कबूल कर लेना और मेरी पूछ ना करना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, इस कहानी से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी बेस वही हदीस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें। एक आदमी के ऊपर अजाब इसीलिए हुआ था कि उसने बेवजू नमाज पढ़ी थी और मजलूम की मदद नहीं की थी। हम भी देखें कि हमारी नमाजें कैसी हैं, और अगर बेवजू नमाज पढ़ने पे ये है तो जो नमाज पढ़ते ही नहीं हो उनका फिर क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।